कुंदाचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार के कर्ता कर्म अधिकार के हम 93 नंबर की गाथा को देख रहे हैं। इस गाथा में यह बात विशेष रूप से फिर से बताई है कि जीव के उठने वाले ये राग द्वेष मोह के जो परिणाम है वह पौद्गलिक है। जो पहली बात गाथा 50 से आगे चल रही थी वो फिर से यहाँ दोबारा उठाई है। तो ये ऐसा क्यों, ऐसा मन में प्रश्न उठना साहजिक है। तो यहाँ तो यही बताना चाहते हैं कि इस जीव के अपने स्वभाव पर दृष्टि केंद्रित हो इसलिए उसको ये पर्याय में जो उठने वाले राग द्वेष के परिणाम है वह उसके स्वभाव के नहीं है, स्वभाव में नहीं है। इसलिए उसे अपनी दृष्टि अपने स्वभाव पर ले जाए इसके लिए बात यहाँ बताई जा रही है। देखो ये अभी जो हम पृष्ठ क्रमांक 27 पर आए हैं तो नीचे से तीसरा पैराग्राफ है। ये कल ये बात हुई थी लेकिन फिर भी आज दोबारा उसको हम देखेंगे। वहां तो ये बात कहते हैं, देखो ज्ञानमय आत्मा छे ते रागमय नथी। केम केम के राग चेतन छे, राग थाय छे चेतननी पर्याय में पण निमित्तनी उपाधि पूर्वक राग थाय छे ते अपेक्षा थी राग ने पुद्गल कहो छे। भगवान आत्मा में राग नथी, यानी भगवान आत्मा में यानी जो स्वभावी त्रिकाल स्वभाव है उस स्वभाव में, आत्मा के स्वभाव में जो भगवान आत्मा है उसमें राग नथी अने आत्माना स्वभावना लक्ष्य राग उत्पन्न थतो नथी। देखो और एक अधिक बात क्या बताई है, अगर कोई जीव अपने स्वभाव के तरफ लक्ष्य करेगा उसमें एकाग्र होगा तो उससे राग उत्पन्न नहीं होगा। तो क्या उत्पन्न होगा साहब सौभाग चंद जी? राग उत्पन्न नहीं होगा तो क्या उत्पन्न होगा? हाँ बोलो। हाँ राग नहीं होगा तो क्या होगा वहाँ? हाँ अभी राग की बात चल रही ना, यहाँ ज्ञान की बात चल रही क्या? ख्याल में है ना? आप जो कहते हो वो रॉन्ग नहीं है पर ए बात आई नहीं। भाई यहाँ तो कह रहे हैं ना कि अपने स्वरूप में एकाग्र हो जाएगा तो उसको राग का अनुभव नहीं होगा, उसमें राग नहीं एना लक्ष्य राग उत्पन्न थतो नथी तो शू उत्पन्न थशे भगवान? तो वितरागता थशे बीजू, क्योंकि वह तो अभी स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है तो चारित्र गुण का स्वभाव परिणमन तो वितरागता मय ही है। ख्याल में आया? तो कहते हैं भगवान आत्मा मा राग नथी अने आत्मा ना स्वभावना लक्ष्य राग उत्पन्न थतो नथी, आत्मा माती तो ज्ञान अने आनंद ने उत्पित थाय एवी एनी शक्ति छे तेथी राग ने पुद्गल परिणाम कहया छे। ये बात ख्याल में आ गई? ये बहुत दिन से ये बात लोगों के मन में है, कोई पूछते हैं कोई नहीं पूछते हैं, लेकिन भाई पहले अभी तक तो बोल रहे थे कि वो राग में यानी जो विकारी परिणाम है उसका कर्ता भी आत्मा है, और फिर से अभी एक मिनट में पलट खा गए, यानी आपका कोई निश्चित नहीं, एक दफे ऐसा कहते हो एक दफे हाँ हाँ हाँ, एक दफे ऐसा कहते हैं वो अपेक्षा वहां जुदी है, वहां तो परद्रव्य तुझे राग उत्पन्न कराए ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, ये राग जो उत्पन्न हो रहा है कहां तेरी पर्याय में, तो वो तेरे स्वयं के अपराध से हो रहा है, वो तेरी गलती है तेरी खामी है, ऐसा जब तक तू नहीं मानेगा क्या करूं साहब, ये कर्म बीच में आ गए और मुझे राग हो गया, या ये हमने देखा यहां एक सोने का बिस्कुट गिरा है तो उठाने का मेरा मन हुआ, मैं तो वैसा सीधा साधा आदमी हूं, क्या करे पर के कारण मुझे राग होता है, तो ये जब ऐसा बताता है कि पर के कारण मुझे राग होता है तो उसकी वितरागता भी पर के कारण से होनी, उसका मोक्ष भी दूसरे के कारण से होगा, स्वयं के पुरुषार्थ से नहीं होगा, ऐसा पराधीन स्वभाव इस जीव का नहीं है, ये बात बताने के लिए परद्रव्य से तेरे में कोई होता नहीं है, अरे यहां तक कि बताया कि ये परद्रव्य सामने है इसलिए मुझे ज्ञान होता है ये भी बात नहीं है, ख्याल में यहां तो अपने स्वभाव की स्वतंत्रता बतानी है, यहां तो परद्रव्य से तेरे में कोई भी परिणमन नहीं होता है, ना तू परद्रव्य का परिणमन कर सकता है ना परद्रव्य तेरा परिणमन कर सकता है, इस अपेक्षा से राग का कर्ता यह जीव है, वह भी ज्ञानी को नहीं कहा था अज्ञानी को कहा था, ख्याल में आया, अब यहां क्या कह रहे हैं राग पुद्गलोचे, ये क्यों कह रहे हैं कि स्वभाव में वो नहीं है, अब यहां तो बहुत बढ़िया बात बताई है, क्या ये नीचे से सेकंड थर्ड लाइन ऊपर से भी थर्ड लाइन, भगवान आत्मा मां राग नथी ने आत्मा ना स्वभाव ना लक्ष्य राग उत्पन्न थतो नथी, आगे बताए ज्ञान आनंद उत्पन्न थाय छे, पण अहीं तो भाई अपने आगे वाँचू नहीं ने, एटले अहीं तो रागनी ज वात चाले छे, चारित्र गुणनी ज वात चाले छे, एटले त्यां तो वितरागतानी ज उत्पत्ति थशे, अभी नीचे अभी लास्ट बटवन लाइन है ना, देखो पंचाध्यायी मां, ये पंचाध्यायी इसका लेखक कौन है भाई, नलिन भाई पंचाध्यायी, हाँ आप क्या कहना चाहते हैं, हाँ किसको पता नहीं लगा, हमको क्या तुमको, अच्छा हाँ तो फिर कौन है, देखो सुनो पंचाध्यायीकार के लेखक कौन है ये अभी डिसाइड नहीं हुआ, ये बात सही है, उनके बारे में जब कुछ कोई रिफर करते हैं तो पंचाध्यायीकार ऐसा लिखते हैं ऐसा बताएंगे, अब उनकी जो स्टाइल है जो लिखने की कहने या समझाने की वो तो अमृत चंद्राचार्य से बहुत मिलती जुलती है, इस अपेक्षा से उन्हें उनका कर्ता कहने में आता है लेखक कहने में आता है, लेकिन वो बात अभी कन्फर्म हुई नहीं है, कोई बात नहीं, तो ये पंचाध्यायी मां पुण्य पापना भाव ने आगंतुक कहो छे, आगंतुक का अर्थ क्या, जो अपना नहीं है, कोई बाहर का आता है ना, हाँ जी मेहमान, अच्छा मेहमान, आगंतुक नो अर्थ मेहमान था, अच्छा हमारे मराठी में आगंतुक का अर्थ जो अनवांटेड ऐसा जो मेहमान आवे उसको आगंतुक कहते हैं, यानी मान लो हम और तुम कुछ ऐसा खुसफुस कर रहे क्या कि कोई ऐसी बातचीत चल रही, तो इतने में नलिन भाई बीच में आके खड़े हो जाए, ये आगंतुक कहां से टपका यार, इसको आगंतुक कहते हैं, अभी आप आगंतुक को अच्छा नाम देते हैं मेहमान तो वो ले लो, हमें तो ये समझाना है कि वो अपने घर का नहीं है, आवे और जावे ऐसा है, तो ये राग भी कैसा है, आगंतुक है मेहमान जैसा है, आता है और निकल जाता है, हाँ जी लिखा है, चलो गुजराती में सब मेहमान होते हैं, अच्छा क्या लिखा देखो देखो, जे मेहमान आवे छे अने चाल्या जाय छे तेम आत्मा ते त्रिकाली ध्रुवची छे, हाँ जी फिर से जरा जोर से बोलना,
आत्मा जे त्रिकाली ध्रुवची छे,
तो क्या हुआ,
तो कुछ नहीं आप पढ़ना कुछ,
अरे मैंने जे ही कहा था भाई, तुमने सुना कुछ गलत, देखो देखो देखो, पंचाध्यायी मां पुण्य पाप ना भाव ने आगंतुक कयो छे, जेम मेहमान आवे छे अने चाल्या जाय छे, तेम आत्मा जे त्रिकाली ध्रुव चीज छे एमा आ राग द्वेष ना भाव थाय, करे ऐसा नहीं लिखा हो, थाय ते आगंतुक भाव छे, ते राग ने अहीं अचेतन कहीने अनुभव करावामा एटले ज्ञान करावामा समर्थ एटले निमित्त छे एम कहियुं छे। ज्ञान तो स्वयं पोताथी थाय छे, तेमा रागादी भाव निमित्त छे एम कहियुं छे। ये कल किसी ने पूछा था ना, निमित्त क्यों कहा है, डॉक्टर साहब आपने पूछा था। देखो देखो, राग ज्ञान ने करे के ज्ञान राग ने करे एवी वस्तु नथी। भगवान आत्मा राग थी भिन्न पड़ी ने ज्या ज्ञानमय थयो त्यां ते कर्म चेतना अने कर्मफल चेतना ना परिणाम ज्ञान मा ज्ञेयपने निमित्त छे। यानी वो राग द्वेष के जो परिणाम है और जो हर्ष शोक के परिणाम है वे ज्ञान के गेय है। ये कल बात आई थी ना, कर्म चेतना यानी यहाँ जीव मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, उस रूप राग द्वेष मैं हूँ ऐसा वह मानता है, वह कर्म चेतना हुई। और वो जो कोई संयोग उसके हुए तो उसके कारण मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसा जो स्वयं को माने वो कर्मफल चेतना है। तो यहाँ क्या कहते हैं, भगवान आत्मा राग थी भिन्न पड़ी ने जहाँ ज्ञानमय थयो, एटले जिसको आत्मानुभव हुआ त्यां ते कर्म चेतना ने कर्मफल चेतना ना परिणाम ज्ञान मां ज्ञेयपणे छे, ते निमित्त छे। एने ज्ञान थाय छे तो पोताथी, पण ए जे भाव छे ए ज्ञान थवामां निमित्त छे।
अभी थोड़ी ये माने छे के बदले अनुभवे छे, एम कहेवानुं सारुं पड़े।
हां बोलो बोलो।
देखो क्योंकि अभी राग से भिन्न पड़ गया ना वो, तो अभी वो मैं रागी हूँ ऐसा मान तो नहीं रहा है, परंतु अपने में राग हो रहा है उसका उसकी ज्ञान है, अपने को उस वहाँ राग का अनुभव चल रहा है, चेतना लिया ना उसको, वैसे ही उसके कारण मैं सुखी या दुखी हूँ ऐसा मान नहीं रहे हैं, उसकी मान्यता अभी ठीक हो गई है, भ्रांति टल गई है, फिर भी अपने परिणामों में सुख दुख का अनुभव चल रहा है, जितने अंश में राग है उतना उसको दुख का भी अनुभव हो रहा है, वो बिल्कुल एकदम अनंत सुखी हो तो बात है ही नहीं है। इसलिए ज्ञान चेतना में कर्म चेतना को गेय रूप निमित्त कहा, तो कर्म चेतना में अपने को वो राग रूप मान रहा है ऐसा अगर ले लेंगे
तो मिथ्या हो जाएगा।
हाँ, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा।
नहीं नहीं, ये पहले हाँ, हमने जो पहले देखा
नहीं, था पहले पढ़ा था वो तो स्थूल कथन,
उसकी बात हाँ, मैंने बताई अभी। हाँ, यहाँ जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ तो ज्ञानी की बात ले रहे हैं ना, जो ज्ञान में परिणत थी गयो छे, तथापि इन्हें अजी अजू राग बाकी छे। पर ऐसा भी देखा जाए तो एक अपेक्षा से ये भी कहा है कि जिसके ज्ञान चेतना है उसके कर्मफल और कर्म चेतना नहीं होती।
हाँ,
है
वो नहीं होती।
हाँ, वो भी अपेक्षा जुदी है,
वो अपेक्षा वहाँ है, यहाँ पर्याय में वो है, उस अपेक्षा से उसको कर्म चेतना कर्मफल चेतना भी है ऐसा कहेंगे
बराबर,
परंतु मान्यता में या उसके उसके भी वो ज्ञान में अपने को अनुभव करता है, राग को पर गेय तरीके से जानता है। कर्ता भोक्ता नहीं पर उसको ज्ञाता है, यानी वही अध्यात्म की अपेक्षा उसको कर्म चेतना भी नहीं है और कर्मफल चेतना भी नहीं है, परंतु पर्याय में परिणमन है, परिणमन की अपेक्षा से।
देखो अभी वो पूरा वितरक तो नहीं हुआ ना, अभी
परिणमन
तो
की अपेक्षा उसको कर्म चेतना है, परंतु अध्यात्म यानी उसको अपने में किसमें अपनापन है, उसको ज्ञान में ही वो अपने अपनापन है, उसको अपने को ज्ञानमय अनुभव कर रहा है।
देखो हम दूसरी भाषा में समझना चाहेंगे तो कोई जो सम्यक दृष्टि जीव है मुनिराज है तो उनमें भी 28 मूल गुण पालन करने के परिणाम होंगे क्या नहीं होंगे, तो वो तो उठ रहे ना उनमें, वो नहीं कर रहे लेकिन परिणाम आ रहे, तो वो जो परिणाम है उनके वे ज्ञाता है, वो कर्मफल कर्म चेतना के ज्ञाता है। ख्याल में है ना,
यानी वहाँ
आप जो बता रही है वो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, कि कर्म फल चेतना, और उसमें वो कभी कभी ऐसा भी उनको लगता होगा कि अरे आज मुझे भगवान के दर्शन हुए, तो सुख मतलब हर्ष भी होता होगा उन्हें। नहीं वो तो सभी
नहीं, जितने अंश में राग है उतने अंश में वो सब दोनों है,
तो वो कर्म फल चेतना।
अब ये जो कोई नए लोग है उसके लिए ये चेतना आगे शब्द लगा है, तो चेतना का अर्थ होता है अनुभव। चेतना जीव की पर्याय है ना, तो जो राग द्वेष होते हुए अपने को रागी द्वेषी अनुभव करता है उसको कर्म चेतना कहने में आता है। कर्म फल चेतना है ने, अभी राग द्वेष का कर्म है ने, राग द्वेष उसका फल क्या होता है, सुख दुख है। ये है तो दुख ही, परंतु जिसको हम हर्ष विषाद के परिणाम कहते हैं, तो मैं सुखी हूं और मैं दुखी हूं ऐसा जिसका अनुभव चलता है, मान्यता के साथ अनुभव भी चल रहा है ना, उस अपने को वो सुखी हूं दुखी हूं ऐसा अनुभव भी चल रहा है उसको। पहले कैसा अनुभव चल रहा था, मैं रागी हूं मैं देश हूं, ये उसका मिथ्या ज्ञान ही चल रहा था, उसके साथ मिथ्या तो भी है। हाँ, तो वैसे कहेंगे कि जैसे एक इंद्रियादि जो क्या है वो तो कर्म फल चेतना वाले है, सुखी दुखी अनुभव करते है, उसका प्रतिकार करने की या जो कोई राग द्वेष वैसे जो यथायोग्य होते है उसकी बात नहीं है, तो उनके तो कर्मफल चेतना की मुख्यता है। बाकी अन्य जीवों को कर्म चेतना की मुख्यता है, कुछ करना भी चाहते हैं, राग द्वेष भी करते हैं, उसका उपाय भी करते हैं, तो कर्म चेतना। परंतु जो ज्ञानी जीव है उनके ज्ञान चेतना है, अपने को ज्ञान रूप ही अनुभव करते हैं, यानी राग द्वेष के काल में भी अपने को ज्ञान रूप अनुभव चलता है, उसको कहते हैं ज्ञान चेतना वाले। अब जब हम अध्यात्म को सीखते हैं तो हम चौथे गुणस्थान से क्या है उसको अपने को ज्ञान रूप अनुभव चल रहा है, तो वहां कहेंगे उसको कर्म चेतना कर्म फल चेतना है ही नहीं है, उस अपेक्षा से उसको ज्ञान चेतना वाले कहेंगे। परंतु जहां अभी राग द्वेष भी है और सुख दुख भी है पर्याय में, उस अपेक्षा से कहना है तो उसके तीनों चेतना है, अभी पूर्ण वितरागता नहीं है तब तक उसको कर्म चेतना भी है, और जब तक अभी पूर्ण सुखी नहीं हुआ है अनंत सुखी नहीं हुआ है तो उतने अंश में राग जितना है उतना उसमें दुख का वेदन भी होगा, उस अपेक्षा से, अपेक्षा सहित दोनों प्रकार के कथन आते हैं।
यानी अभी ये चेतना जो है ना, ये भले हम कर्म चेतना कहें कर्म फल चेतना कहें, तो उससे ये आठ कर्म जो है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये जीव के परिणाम मिथ्यात्वावस्था में कैसे होंगे और सम्यक्त्व के बाद कैसे होंगे, इसका यहाँ थोड़ा सा हमें ज्ञान होना चाहिए, इसलिए आपको डिटेल में बता दिया अभी।
और अभी ये 27 पेज पर इसको हमने देखा था, देखो कल हमने पढ़ा था, ऊपर से दूसरे पैराग्राफ में छठी लाइन, छठी लाइन में अंत में ये तो स्थूल कथन कर दिया कि दयादान विकल्प छे कर्म चेतना छे, यानी राग द्वेष के परिणाम जो है दयादान कहो जो कुछ है अन्य भी ये कर्म चेतना में लिया, और हरक शोक के परिणाम कर्मफल चेतना है। ये बहुत एकदम
शॉर्ट में
और बिल्कुल समझ में आए ऐसी स्थूल परिभाषा है,
और
वो गलत है ऐसी बात नहीं है। और यही बात यहाँ अभी कह रहे हैं कि ज्ञानी को भी दया ज्ञान दया दान के परिणाम है, तो वो उसके कर्म चेतना है और वो उसको जानता है, तो वो जानने में निमित्त है, बस इतना है।
वहाँ पर भी यही लिखा है 27 पृष्ठ पर, हाँ, कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना पुद्गलना परिणाम छे,
ये राग को
ये
पुद्गल
जीव के जो राग के परिणाम है या उसमें हर्ष शोक आदि जो करता है वह स्वभाव भाव नहीं है, इस अपेक्षा से उसको पुद्गल के परिणाम कहा गया। क्या होता है कई कई बातें ऐसी होती है कि थोड़े आगे पीछे से सोचने से थोड़ा ख्याल में आ जाता है,
चेतना है ना, चेतन में उत्पन्न हुए परंतु वो भाव को भी अचेतन कह दिया, रागादि भाव अचेतन है, पुद्गल के है, मेरे है ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ज्ञान में अब तक जो एकत्व नहीं है, अहम बुद्धि नहीं हो रही है, और पुद्गल ये रागादि में ही जो अहम बुद्धि इतनी भरी पड़ी है अनादि से, उसको छुड़ाना है, वो पुद्गल का है, तेरा है ही नहीं, ऐसा कह दिया। परंतु वही प्रवचन सार में कहेंगे तू जो जब राग कर रहे तो तू रागी है, आत्मा स्वयं क्रोध है, आत्मा स्वयं राग है, अपेक्षा सहित उसको बराबर ठीक समझना, भेद ज्ञान के लिए कार्यकारी है, इसलिए उस तरह से नहीं तो ऐसा नहीं, अरे ये तो ये निश्चय है, ये तो ऐसा ऐसा नहीं, उसको अपेक्षा नहीं, उसको ढीला करने वाला नहीं है, उसको बल लेने के लिए वो अपेक्षा होती है। हमें लक्षण नहीं, नहीं वो तो उस अपेक्षा से कथन है, वैसे तो है नहीं है, परंतु अपेक्षा से ऐसा नहीं होता। बिना कुछ प्रश्न है नहीं, मिथ्या दृष्टि को ज्ञान चेतना नहीं है, ज्ञान है परंतु ज्ञान में उसको अपने को ज्ञान रूप अनुभव नहीं चल रहा है। ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टि के ही है, क्योंकि वो अपने को ज्ञान रूप अनुभव चल रहा है उसको। मिथ्या दृष्टि को ज्ञान नहीं है या चेतना नहीं है वो बात नहीं है, वो अपने को रागी द्वेषी और सुखी दुखी ही मान रहा है, मान भी रहा है और अनुभव भी रहे। मिथ्या दर्शन के साथ मिथ्या ज्ञान भी चल रहा है ना, चेतना शब्द आने से उसको अनुभव किस रूप से चल रहा है उसकी बात आती है, उसकी मुख्यता से उसको समझना। हाँ हाँ हाँ, यानी राग द्वेष करो ये तुम्हारा स्वरूप है, हम कर सकते हैं, छुड़ा सकते हैं, ये वहाँ कुछ मिथ्या बुद्धि होती है उसमें, ये तो लौकिक, वह तो लौकिक कार्य की अपेक्षा, वो तो कर्म क्या है उसको भी वहां कुछ नहीं कहा है। राग द्वेष को उन्होंने कर्म नहीं कहा, ये लौकिक जो कार्य होता है उसके कर्म कहा,
लड़ाई करने को कर्म कहा,
यानी कर्म करते रहो उसके फल, यानी वो बच्चों का पालन पोषण करो, समाज का करो, इसी को वे कर्म कहते हैं।
लेकिन अपेक्षा मत रखो, वो जाने उसको आपने क्या करना। अपने को पहले जैन दर्शन तो सीख ले हम, बाकी की कोई देखो भैया बात तो ये समझ लेना कि चेतना जो लिखा है ना भाई, पिनाक भाई आपको बता रहा हूँ, वो ज्ञान स्वरूप मैं हूँ ऐसा अनुभव कौन करेगा, मिथ्या दृष्टि करेगा कि नहीं, वो तो करेगा ही नहीं, तो उसको ज्ञान चेतना होगी नहीं। अब ज्ञान चेतना किसके होगी कि जिसने स्व को ज्ञान स्वरूप जाना है, माना है और अनुभव किया है। अभी इसमें अनुभव किया इतना ही ले लो ख्याल में, और मिथ्या दृष्टि क्या करता है, मैं रागी हूं मैं द्वेषी हूं ऐसा ही अनुभव करता है, तो उसको कर्म चेतना है ऐसा कहा। और वो जो कोई आसपास के संयोग है कहो या जो कुछ बात है उसके कारण से मैं सुखी हूं, हमें तो सुखी छे केम, मारो मोटो दीकरो एम करे छे, बीजो दीकरो एम करे छे, 8 लाख करोड़ रूपयानी संपत्ति छे, अमे तो सुखी छे, ये कर्म फल चेतना छे।
और ये भगवत गीता जो है किसने उपदेश दिया उसमें, बोलो नलिन भाई, कृष्ण ने दिया जो सम्यक दृष्टि था, ऐसा उपदेश दिया उसने। ये भगवत गीता उसके नाम से बाद में लिखी है और वो परमति लोगों ने लिखी है, तो उसमें भ्रांति उनकी उसमें लिख दी है, क्योंकि कृष्ण कौन है पता है ना। हाँ अभी कहाँ है, आके क्या होने वाले, तीर्थंकर, तो तीर्थंकर की प्रकृति कहाँ से बांधनी शुरू की। हाँ नेमिनाथ भगवान के उसके चचेरे भाई थे ना, तो यहीं से जो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला था कोई समय दृष्टि था, तो ये ऐसा उपदेश नहीं, उसके नाम से बाद में बहुत सारी भ्रांतियां चली। ये तो हमारा यहाँ के लोगों का अज्ञान है कि उसके नाम पर ऐसी ऐसी चलती है, और तो नए नए पंथ स्थापित करते हैं उसी के नाम से अलग अलग, वो तो चलता रहता है। तो उसमें कुछ मूल बातें रखते, शब्द तो वही के वही रखते, अभी कर्म करते रहो हमें ये फल की आशा, और लोगों का अच्छा लगता है तो ऐसा अच्छा लगे ऐसा उपदेश देते रहते हैं। ये तो सभी पंथों में चलता है, ऐसा कोई बात नहीं ऐसी, हमें तो बिल्कुल अध्यात्म ही लेना है। अभी जैनियों में कर रहे तो अन्य की क्या बात है।
पंडित टोडरमल जी के भाषा में कहना हो तो जो खोटा व्यापारी होता है वो असली हीरे और नकली हीरे की मिलावट करके धंधा करता है, वैसे आत्मा तो किसी से मारा नहीं जाता है, जलाया नहीं जाता है, पानी में भींचता नहीं है। अरे देखो देखो आपने जैसे बोल रहे हैं, आपने जैसे बोल रहे हैं एकदम खुश, हाँ तो ऐसी बात नहीं है, वो तो सर्वथा ऐसा है ऐसा मानते हैं, पर्याय रहित आत्मा है ऐसा मानते हैं। ये अंदर की बात कौन जाने, हमें तो जेटलू सारू छे एटलू रहिए, जे आपड़ा कामनो आवे एटलू सांभड़ीए, ऐसा होता होगा।
वहां लिखते ना तू मेरी शरण में आ जाए तेरा कल्याण, मेरी नहीं अपनी शरण, अपनी का वो मेरी कर दिया, ख्याल है ना।
चलो जाने दो, अभी दूसरे की बात मत सोचो, यहाँ जो बात बता रहे हैं उसको हम सोचेंगे, नहीं तो आपने यहाँ ज्ञान चेतना क्या है, कर्म चेतना क्या है, वही भूल जाएंगे, और बोलते कृष्ण चेतना ही अपने ख्याल में आ जाएगी। चलो देखो, अभी अगला पैराग्राफ है ना, पोतानु जे स्व पर प्रकाशक ज्ञान परिणम्यु ते ज्ञान आत्माती अभिन्न छे अने परथी रागादीती सदाय अत्यंत भिन्न छे। ये क्या कहे हैं? ये ज्ञान कैसा है कि स्व पर प्रकाशक रीते परिणम्यु, वो किसका परिणम है का? परिणमता तो सब ही का है, लेकिन ये तो ज्ञानी ही जाने के, मेरे ज्ञान में ये भी जानने में आ रहा है और वो भी जानने, यानी स्व पर ऐसा जो ज्ञान है वह आत्मा से अभिन्न है ये ज्ञान। अने ये राग द्वेष जो है परथी एटले रागादिति सदाय अत्यंत भिन्न छे, तथा पर्याय मां जे रागादि परिणाम थया ते पुद्गलती अभिन्न छे अने आत्माती सदाय अत्यंत भिन्न छे। कौन? ये रागादि परिणाम। जेम करवती बेकटका करे तेम अहीं ज्ञान ने राग वच्चे भेद ज्ञान करीने बेकटका करवानी वात छे। रागादि परिणाम ज्ञान मां निमित्त छे, एनो अर्थ शुं? एनो अर्थ एटलो के ज्ञान पोता थी स्वपर प्रकाशक पने परिणमे छे, एमा ते रागादि भावो पर ज्ञेय पने निमित्त छे। क्या राग छे तो अहीं ज्ञान परिणम्यू छे एम नथी। आत्मा ज्ञान करवामां स्वतंत्र छे, राग थयो माटे रागनुं ज्ञान थयुं एम छे नहीं। ये तो बहुत सिंपल है, समझ में आ जाए ऐसी बात है। रागना निमित्ते थतुं ते प्रकारनुं ज्ञान आत्माथी अभिन्नपनाने लीधे पुद्गलथी रागती सदाय अत्यंत भिन्न छे। जो आ परमात्मानी वाणी, संतोनी वाणी, संतोनी वाणी ए परमेष्ठीनी वाणी छे, आचार्य पण परमेष्ठी छे ने। धवलमां नमोलोए त्रिकाल वर्तती, त्रिकाल वर्ती सव्वस अरिहंताणम इत्यादि एवो पाठ छे। यानी इसमें हर पंचपरमिष्ठी के आगे नमोलोए त्रिकालवर्ती सव अरहंताणम, नमोलोए त्रिकालवर्ती सव सिद्धाणम, इस तरह सब में लिया। और हमें जो परिचित है वह तो अंत्य दीपक करके हम सिर्फ साधु के, साधु परमिष्ठी के आगे ये सव लोए ऐसा लगा दे। चलो, त्रिकालवर्ती पंचपरमिष्ठी ना अस्तित्वनो स्वीकार करीने तेमने नमस्कार करवानो जे राग थयो ते पुद्गलना परिणाम छे एम आई कहे छे। अभी इतना अच्छा, मतलब जिसको हम प्रशस्त राग कहेंगे उसको भी आप पुद्गल के खाते में डाल दिया हा? तो आपने खाने पीने के भाव है उसको क्या कहेंगे? अच्छा, पुद्गल के कहेंगे भाई, ख्याल में है ना। अने ते पुद्गल परिणाम ज्ञान करावामा निमित्त रूपे समर्थ छे, यानी वो निमित्त है इतना ही, पण छे तो ए पुद्गल परिणाम अने पुद्गल थी अभिन्न छे, तेनु जे ज्ञान थयुं ते पुद्गलना साथे अभिन्न छे एवुं जे ज्ञान थयुं ते ज्ञान आत्मा थी अभिन्न छे अने रागना परिणाम थी अत्यंत भिन्न छे। परद्रव्य ने नमस्कार नो भाव ए राग छे, विकल्प छे। स्वना अनुभव मां लीन थवुं, स्वमां नमवुं ए निश्चय नमस्कार छे। स्वाश्रय निर्विकल्प दशा प्रकट करवी ते भाव नमस्कार छे। पंचपरमेश्वरनी वंदनानो जे विकल्प थयो ते कर्म चेतना छे। तो ये मुनियों को होगी कि नहीं भाई? ये कर्म चेतना की बात आई, देखो मुनि भी नमोकार मंत्र बोलेंगे। पंच परमेश्वरी वंदनानो जे विकल्प थयो ते कर्म चेतना छे, પંચ પરમેશ્વરની વંદનાના ભાવમાં જે હરખ આવી ગયો તે કર્મફળ ચેતના છે. આહારક શરીર આહારક રુદ્ધિધારી જો મુનિરાજ હોતે હૈ વો તીર્થંકરો કે વંદના આદિ કરને કે લીએ યા ઉનકે મન મે કોઈ સંશય હોય તો વહાં જાતે હૈ ઓર વહાં ઉનકે પ્રશ્ન કા ઉત્તર હો જાય યા ઉને દર્શન હો જાય તો હરખ તો હોગા હી હોગા. હમે ભી કોઈ બાત હમસે બહોત ચલતી હૈ ઓર ઉસકા ઉત્તર કહીં શાસ્ત્ર મે મિલતા હૈ તો હમે ભી આનંદ હોતા હૈ ને એક પ્રકાર કા આહા મેં બોલ રહા થા ના એસા હી હૈ દેખો દેખો એસા હમે ભી લગતા હૈ વો કર્મફળ ચેતના હૈ યહાં બતા રહે. હા વો તો ઉનકા તો ભેદ જ્ઞાન ચાલુ હૈ ને એ તો દોનો આપની વાત બતાઈ ઓર મુનિયો કી ભી વાત બતાઈ મેં. દેખો થર્ડ લાઈન સે પઢતા હું. પંચ પરમેશ્વરની વંદનાના ભાવમાં જે હરખ આવી ગયો તે કર્મફળ ચેતના છે. આ કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતનાના પરિણામ પુદગલથી અભિન્ન છે અને તે પ્રકારના જ્ઞાનથી તે પરિણામ અત્યંત ભિન્ન છે. આહા ગજબ વાત છે. પ્રભુ તારી રુદ્ધિ તો દેખ. એ કિસકો બોલ રહે નલિનભાઈ? હા મુજકો બોલ રહે. કોણ? સ્વામીજી ક્યાં કહે રહે? પ્રભુ તારી રુદ્ધિ તો દેખ, રાગનું જ્ઞાન કરવા તું સમર્થ છો, પણ રાગ કરે એવી તારી શક્તિ નથી, કેમ કે રાગની તારામાં નાસ્તી છે. કેવું? એ કોણ સે બલબુતે પે કહે રહે અશ્વિનભાઈ કે રાગની તારામાં નાસ્તી છે? આપ બતાએંગે? હા ડોક્ટર. હા અરે યહાં બોલે ને પૂતગલ પરિણામ છે, પૂતગલ પરિણામ એક નહીં દસ બાર બોલા. તો રાગની તારામાં નાસ્તી છે, સ્વભાવમાં પણ નાસ્તી જ છે, પણ પર્યાયમાં છે. પણ એ પર્યાયમાં તો પૂતગલનો છે એમ કહી દીધું. ખ્યાલ મેં ને? દેખો યહાં જો વિષય ચલ રહા હે ના ઉસકે અનુરૂપ હી યહાં હમે સોચના ચાહીએ. હા ક્યા કહે રહે? દેખો તારી રુદ્ધિ તો દેખ ઓર ખાલી તા. એ નલિન તારી રુદ્ધિ તો દેખ ને પ્રભુ એસા બોલ રહે સ્વામીજી. હા તારી રુદ્ધિ તો દેખ, રાગનું જ્ઞાન કરવા તું સમર્થ છો, પણ રાગ કરે એવી તારી શક્તિ નથી. અરે વાહ, કેમ કે રાગની તારામાં નાસ્તી છે. આ લીમડાના એક પાંદડામાં અસંખ્ય શરીર છે અને એક શરીરમાં એક એક જીવ છે, એમ ઠસાઠસ જીવ ભર્યા છે. દરેકના કારમાન અને તેજસ શરીર ભિન્ન છે. આવા જીવોના અસ્તિત્વનો જ્ઞાની જ સ્વીકાર કરી શકે, અજ્ઞાનીને એનો સ્વીકાર હોતો નથી.
જરા એક પ્રશ્ન પૂછના, યહાં કિસકી બાત ચલ રહી હૈ? કૌન સે જીવો કી? હા 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 વનસ્પતિ કઈક મેં દો ભેદ હતા, એક નિગોદ ભી હોતે ઓર પ્રત્યેક શરીર ભી હોતે, ઉસમે કિસકી બાત ચલ રહી? હા અભી યહાં ખ્યાલ મેં આયા, એક પાન હૈ ઉસમે અસંખ્ય શરીર હૈ ઓર
લીમડાનું ઝાડ આ સામે લીમડા,
કોઈ ભી એક પાન માં એક ઉસકે છોટે છોટે ટુકડે મેં એ પૂરી વનસ્પતિ એક જીવ નહીં હોતા, એ વાત ઇસસે સિદ્ધ હોતી હૈ.
બહુ બાર સોરી બહુ બાર જીવો કી એસી માન્યતા, એક ઝાડ યાને એક જીવ. ખ્યાલ મેં? અભી હમે લીલોતરી ખાને કા ભી જો નિષેધ બતા રહે હૈ, ઓ લીલોતરી એક એક પાંદડામાં અસંખ્ય શરીર છે. ખ્યાલ મેં?
યાની કહે ના, દેખો
નિગોદિયા કી બાત નહીં, નિગોદિયા કી એક શરીર મેં અનંત જીવ, યહાં તો એક શરીર મેં એક જીવ, વો તો સાધારણ હો ગયે ઓર યે પ્રત્યેક હૈ. ખ્યાલ મેં? તો યહાં કહે રહે કે હમ ભી એસા હી માનતે થે કે ઇતના બડા એક પર્વત હૈ તો વો એક જીવ હૈ, નહીં એક ઇતના બડા બડકા ઝાડ હૈ ઉસમે એક આખા જીવ હૈ. લોક બોલતે ના અરે આપ ક્યા એક પ્રાણી કો માર કે ખાયંગે, તુમ સબ્જી નહીં ખાતે ક્યા? ઉનકો યે નહીં માલૂમ કે ઇસમે જીવ હૈ, ફિર ભી વો એસા બોલતે હૈ. તો ફિર હમ દલીલ ઉલટા પુલટા કુછ ભી દે દેતે હૈ, લેકિન વાસ્તવ મેં તો બાત જુદી હી હૈ. વો ક્યા હૈ અસલિયત? યે યહાં સ્વામીજી બતા રહે ઓર હમ કહેતે કે સ્વામીજી કો કરણાનિયો કા અભ્યાસ નહીં થા. અભી બોલો યે હૈ ના ઇસમે ક્યા?
યે બાત સૂક્ષ્મ બાત હૈ, યે સૂક્ષ્મ હૈ ને કૈસી કે જિસકે અભ્યાસ
आमतौर से कोई नहीं जाने ऐसी बात है
सामान्य, उसमें बहुत भ्रांतियाँ चलती है। या जब ऐसी बातें हाँ ये निगोदय करके छोड़ देते, ऐसी बात नहीं है। यहाँ प्रत्येक शरीरी जीवों की बात चल रही है, वनस्पति का एक प्रत्येक शरीरी जीवों की ये बात है, एक एक शरीर में एक एक जीव, और ऐसे एक पन्ने में पान जो है उसमें ऐसे असंख्यात शरीर और असंख्यात एक एक में एक एक जीव है, असंख्यात जीव है, तो पूरे झाड़ में कितने हो गए ख्याल है ना। उसका फूल ले लो, पान ले लो, शाखाएं ले लो, ये पूरा मिलकर एक स्कंद बन गया है वनस्पति का, और उसमें असंख्यात शरीर। हमको प्रश्न ऐसे भी पूछने वाले मिले, कोई किसान है तो कहते अरे हम तो पपाया है तो उसमें भी वो फीमेल पपाया अलग होता है और मेल पपाया अलग होता है, झाड़ पूरा। और आप कहते कि वनस्पति कायिकों में फीमेल मेल कुछ नहीं होता, खाली नपुसक वेद वाले होते हैं, तो उसमें तो असंख्यात जीव होते हैं। पूरा स्कंद को फिर हम नाम देते हैं, कुछ लौकिक में ऐसे बोलते हैं। झाड़ मर गया यानी क्या है, वहां पर जो कुछ
प्रोडक्टिविटी बंद हो गई,
हाँ वो पूरा ही स्कंद में जितने अभी हम देखे वो मूल से उखाड़ने पर कितने ही दिनों तक वो उगते रहते भी, पन्ने कुछ काल तक होते भी, फ्रेश भी रहते हैं, तो तब तक वहाँ वो जीव है नहीं,
एक झाड़ है,
एक जीव नहीं है, एक जीव नहीं है। नहीं उसके तो शरीर है ना, वो तो हम तो उसको काटते हैं, वो तो मशीन में से निकालते हैं, कुछ करते हैं, खाने योग्य बनाते हैं। अभी क्या है एक अभी वो विषय यहाँ नहीं है चरणानियोग संबंधी। वो निगोद की बात चल रही, निगोद की बात यहाँ नहीं बता रहे, ये ऑर्डिनरी पान की बात चल रही है। हाँ किसी भी पान में,
मगही पान में भी, हाँ हो गया। सुनो भाई देखो ये बात ऐसी होती है साहब, इसका हमें प्रथम में प्रथम ज्ञान करना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ श्रद्धा सही हो जाए तो आचरण अपने आप सुधर जाता है। ये मैं मेरे अनुभव से बात बता रहा हूँ। देखो पहले तो ऐसा जमाना था कि उस समय हम कंदमूल के अलावा अन्य कुछ खाते ही नहीं थे, हाँ हमने जिंदगी में कभी नॉन वेज खाया ही नहीं है ख्याल में है, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि इसमें ऐसे अनंत जीव हो सकते हैं, ज्ञान ही नहीं था। तो जब ये बात हमने पहली बार सुनी और उसके ऊपर किसने बताई, तो कहीं सर्वज्ञ ने ये बात बताई है, तो वैसे हमारी श्रद्धा भी हुई ख्याल में है ना, सर्वज्ञ के बात पर यथार्थ श्रद्धा हुई तो खाना ऑटोमेटिकली बंद हो गया। कोई जोर जबरदस्ती करेगा कल से तेरे को नहीं खाना है, नहीं होने का, वो तो अंदर में भाव रहेंगे कि अभी बताया इसने तो क्या करे साहब, अभी मानना पड़ता है, लेकिन अंदर से इच्छा जागृत है खाने की, तो नहीं खाना और खाना एक ही है। मैं अभी और एक बात बताता हूँ कि हमारे रिश्ते में ऐसे एक हमारे भाई समझ लो ना दूर से, उनको हमने कहा अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, ये देखो आलू प्याज कांदा बटाटा तुम खाते हो, ये अच्छी बात नहीं है, इसमें ऐसे ऐसे जीव होते हैं। ये लगातार 2, 5, 10 साल हम उनको बोलते रहे, वो कभी गलती से हमारी बात सुने नहीं, एक फाइन मॉर्निंग क्या बोलते हैं हम लोग, वन फाइन मॉर्निंग क्या, अच्छा हम एक बोले, अच्छा हमारे घर पे आए वो, अरे दिनेश क्या हो गया, देख तू कहता था ना मैंने आलू खाना छोड़ दिया, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये ऐसी उपरति कैसे हुई, उपरति यानी समझते क्या आप, यानी ऐसा आपका दिल कैसा बदल गया, इतनी अक्कल कैसे आई, तो क्या करे। वो मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा तू अगर आलू नहीं खाएगा तो तू डायबिटीज से मर जाएगा, तो मैंने कहा चलो छोड़ देंगे। तो देख तूने कहा तो मैंने माना कि नहीं, क्या मेरे मानने कहने से माना, क्या आपने ये शरीर प्यारा था, 10 साल के बाद मरण होने की जगह अभी 12 साल से तो होगा, इसलिए तूने खाना छोड़ा, ये तो नक्की कर। ख्याल में है ना, ये बात लोगों को समझ में ही नहीं आती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भाई, जितने आपको हो सके वो बात आप उसका अनुसरण करो। अभी आप ऐसा सोचो ना कि मैं ये खाना खाने के बाद वो पान चबाता हूँ, वो नहीं खाऊंगा तो क्या मैं मरूंगा, और मैं खाऊंगा तो एक समय में मैं कितने जीवों को खाता हूँ, असंख्य शरीर छे, वो लीमड़ा ना पान आटला छे अने आप मकई ना पान आटला मोटा छे, फिर वो बनारसी तंबाकू क्या होता है वो तुम जानो, अलग अलग पान आते ना अलग अलग जाति के, तो बड़े छोटे ये वो। तो यहां तो कह रहे हैं यहां तो कह रहे भाई तुझे लगता है ना इसके बिना मैं जी सकता हूं। अभी लोग अचरज करते हैं, क्या तुमने कितने 25-30 साल से खाना छोड़ दिया? हाँ बिल्कुल, तो तुम जीते कैसे हो? अरे क्या पान खा के कोई जीता है, या कोई क्या कहते हैं आलू खाने से कोई जीता और नहीं खाने से मरता है? अरे उन्हें पता ही नहीं कि 33-33 अगर एक कुछ खाना बिना जीव रह सकता है, और यहां तेरे को दिन में 4 बार जो चाहे जितना खाने को मिलता है, फिर भी तुझे गृद्धता ऐसी लगी कि आज ये खादू नहीं। यहां तो यही बताया जाएगा कि जिसको हम दूसरी भाषा में कहेंगे चरणान योग की भाषा में शक्यानुष्ठान, यानी जितना शक्य है उतना अनुष्ठान, यानी वैसा चारित्र अपना रखो, यानी वैसे भाव रखो। ख्याल में? यहां कंसेशन देने की बात नहीं है, वो यहां तो हम अपने स्वयं के जज बने और हम स्वयं सोचे कि क्या इससे मेरा चलेगा। देख लेना, जो रात को भोजन करते हैं उनको पहला ऐसा नक्की करना चाहिए, मैं आज के दिन रात को नहीं भोजन करूंगा। तो एक दिन नहीं खाना खाया, सुबह उठा, अरे मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं अभी, चलो अभी 2 दिन नहीं खा के देखेंगे। ऐसे करते करते 2 दिन 4 दिन 8 दिन 1 महीना लगातार रात को नहीं खाया, अरे मैं अभी तक जिंदा हुआ कोई हर्जा नहीं, अभी तो मैं आजन्म प्रतिज्ञा लेता हूं। ऐसा स्वयं के ही क्या कहते हैं पावर से कहो या निश्चय से, यह जीव कोई भी काम कर सकता है और ये कोई खोटा काम नहीं है। चलो हम सीख रहे द्रव्यानुयोग और उतर गए भाई, ये भी तो बात कभी कभी चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों को रस अधिक है। हाँ, इसमें खाने पीने में ये खाना क्या नहीं खाना, इसमें रस अधिक है। चलो देखो यहाँ क्या कहते हैं, देखो प्रभु तारी रुद्धि तो देख, राग नु ज्ञान करवा तू समर्थ छो, पन राग ने करे एवी तारी शक्ति नथी। केम के रागनी तारामा नास्ती छे, आ लिमड़ाना एक पांदड़ामा असंख्य शरीर छे, अने एक शरीर मा एक एक जीव छे, एम ठसाठस जीव भरिया छे, दरेकना कारमान अने तेजस शरीर भिन्न छे, आवा जीवोना अस्तित्वनो ज्ञानीज स्वीकार करी शके छे, अज्ञानी ने एनो स्वीकार होतो नथी। तो आपको स्वीकार है ना पिनंग भाई? हाँ, तो तुम ज्ञानी हो, चलो चलो। आम असंख्य जीव, क्या लिखा है, असंख्य जीवो भीड़ मां भिसाई पड़िया छे, भीड़ में यानी गर्दी में ना, हाँ, एक राई जेटली बटाटा नी कटकी मां निगोदना जीवना असंख्य औदारिक शरीर छे, अने प्रत्येक शरीर मां अनंत एकेंद्रीय जीवो छे, दरेकना परिणाम भिन्न छे, कोई जीवना परिणाम कोई अन्य जीव ने स्पर्शता नथी। अरे प्रभु तारा ज्ञान नी गंभीरता तो देख, ज्ञान तेने स्वीकारे छे अने ते वस्तु ज्ञान मां निमित्त पण छे, पण तेने स्वीकारतु ज्ञान पोते पोताती थयुं छे, पर निमित्तती थयुं छे एम नथी। कहे छे के राग द्वेष सुख दुखादि अवस्था पुद्गलना परिणाम छे, गजब वात छे ने, जे भाव ती तीर्थंकर गोत्र बंधाय ए भाव पुद्गलनी दशा छे, केम के तेना निमित्ते पुद्गल कर्म बंधाय छे, तेना ती पुद्गलनो संयोग थाय छे। क्या कहते हैं, ये तीर्थंकर गोत्र बांधने से पुद्गल का कौन सा संयोग होता है, एकाध कोई संयोग बताएंगे आप? हाँ इन्होंने कहा समोचरण की रचना, और दूसरा कोई बताएगा? सिंह जड़ित सिंहासन, हाँ 64 चमर जुड़ते हैं, हाँ 12.5 करोड़ वाजंत्री बजती हैं, और क्या क्या मंद मंद पवन घूमता है, 12 मतलब सभी ऋतु के फल फूल मिलते हैं,
दिव्य ध्वनि,
हाँ ये सारे क्या है, ये 8 प्रातिहार्य आगे चले, ये 225 कमलों की रचना होना, ये सब क्या है, पौद्गलिक रचना है। और वो क्या कहते हैं कि ये बधा अभी मैंने क्या पूछा था, पुद्गलनी दशा छे, पुद्गलना संयोग, ये पुद्गल के संयोग है, इससे आत्मा का क्या,
ये दिव्य ध्वनि छूटना भी वो पुद्गल है ओ।
केम के तेना निमित्ते पुद्गल कर्म बंधाय छे, तेनाथी पुद्गल नो संयोग थाय छे, ते भाव आत्म भाव नथी, तेथी पुद्गल परिणाम छे। ये तो जमीन खिसक जाए ऐसी बात है। ज्ञानी ने तीर्थंकर गोत्र बंदना कारण रूप जे शुभ राग आव्यो, ते राग ज्ञान मा निमित्त थाय छे, ते शुभ राग संबंधी तेने जे ज्ञान थयू, ते ज्ञान आत्मा थी अभिन्न छे, अने पुद्गल थी ते शुभ राग थी अत्यंत भिन्न छे। अहो ज्ञाननी पर्याय नो अनंतना अस्तित्व ने अनंतपने जाने एटलो विषय छे, छता परपदार्थ ने राग छे तो ज्ञान जाने छे एम नथी। यहाँ ज्ञान की अनंत स्वतंत्रता बताने का उद्देश्य है, और बार बार यही बता रहे कि परपदार्थ है, परवस्तु है, राग है, इसलिए इस जीव को ज्ञान में जनाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र मां बदी बात छे तो ज्ञान थाय छे ने, क्या कहा, ये शास्त्र में हम पढ़ते हैं इसीलिए तो हमें ज्ञान होता है ना, ऐसा उनको पूछना है ना। ज्ञान पोता थी थाय छे, शास्त्र थी थतु नथी। वड़ी परने जानता जे विकल्प थाय छे, ते विकल्प ज्ञान थी भिन्न छे, माटे विकल्प थी ज्ञान थाय छे एम नथी। आवो वितराग नो मार्ग छे। केटलाक कहे छे समन्वय करो, पन वितराग धर्म नो कोई साथे समन्वय थई शके एम नथी। कोई ने साथे विरोध के द्वेषनी आ वात नथी, पन कोई साथे समन्वय थाय एवो आ मार्ग नथी। आहा जे वड़े तीर्थंकर गोत्र बंधाय एवो जे राग, तेनी साथे पन ज्ञान ने एकता नथी। लोकों ने एम लागे के तीर्थंकर गोत्र बांध्यू अने ते जीव तीर्थंकर थशे, परंतु तीर्थंकर थशे ए तो पोताना कारणे थशे। रागनो भाव आवता तीर्थंकर गोत्र बंधाई जाय छे, परंतु पछी स्वनो आश्रय लेता समस्त राग तूटशे, त्यारे केवल ज्ञान थता तीर्थंकर गोत्रनो उदय आवशे। एमा रागनु अने कर्मनु शू कर्तव्य छे, यानी क्या कहते, तीर्थंकर गोत्र बांधा तो क्या हो गया सब? नहीं, ये स्वरूप में एकता तो उसको करनी ही पड़ेगी, और वो नहीं करेगा तो कैसा हो, क्योंकि जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, तेरवा गुण स्थान प्राप्त नहीं होता है, तीर्थंकर कर्म का उदय ही नहीं होता है। तो उसने तीर्थंकर गोत्र बांधा है इसलिए स्वरूप में लीनता करे, ऐसा नहीं है। कहते राग थी धर्म थतो नथी, राग मारो अने हूँ एनो करता, एवी करता बुद्धि थी अज्ञानी जीव दुखी दुखी छे। भगवान आत्मा आनंद नो नाथ आनंद मूर्ति छे, प्रभु छे, तेने भूली राग मारो छे माननार अज्ञानी जीव चार गति मा रखड़ता महादुखी छे। केम के राग दुख छे, आई कहे छे के ज्या भेद ज्ञान थयुं त्या राग ना परिणाम दुख ना परिणाम पुद्गल साथे अभिन्न छे, अने ते राग परिणाम ना निमित्ते ते प्रकारनु जे ज्ञान थयुं ते आत्मा थी अभिन्न छे अने राग थी भिन्न छे। देखो एक ही बात को कितनी बार हमारे सामने पेश कर रहे हैं, तब भी हमारी माँ भेजे में नहीं घुसती, और कई लोगों को तो रुचि भी नहीं लगती, क्या एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, क्या एक ही बात बार बार बोल रहे हैं। अरे बार बार बोले तो तेरे भले के लिए बोल रहे, किसके लिए? और एक बार बोलने से तू नहीं समझता है, समझता होता तो कब का सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता। तो बार बार प्रेरणा दे रहे हैं आपको, ऐसा इंड्यूस कर रहे हैं कि भाई तू ये बात समझ तो सही कि ये राग परिणाम तेरे नहीं है, पुद्गल के हैं, उससे भिन्न तू है। तेरा तो ज्ञान के साथ अभिन्नता है, राग के साथ नहीं, पुद्गल के साथ नहीं। क्या कहते हैं थर्ड लाइन, आई कहे छे जहां भेद ज्ञान थयू त्या रागना परिणाम दुखना परिणाम पुद्गल साथे भिन्न छे, अने राग परिणाम ना निमित्ते ते प्रकारनु जे ज्ञान थयू ते आत्मा त्या भिन्न छे अने राग थी भिन्न छे। ज्ञान राग से भिन्न है, यही बात बता रहे। तथा जे रागना परिणाम थया ते पुद्गल त्या भिन्न छे अने ज्ञान थी भिन्न छे। आवु भेद ज्ञान ज्यां सुधी करशे नहीं त्या सुधी भूलो पड़ेलो भगवान चार गतिमा आथड़शे। लोको बिचारा वेपार धंधा मा रड़वा कमावा मा गरी गया होय अने डूबी गया होय, तेमने आ नक्की करवानी क्या फुर्सत छे, पन दुखती बचू होय तो आ समझा विना छुटको नथी भाई। आ खेती नथी करता, खेती मा बाजरी जुवार कपास वगैरे मोल पाके तेने जोईने खूब हरकाई जाए, जीव राजी राजी थई जाए। गुजरात मा कपास ढगला बंद पाके तो कहे के कांचू सोनू पाक्यू छे। अरे भाई खेती नो मोल छे ए तारी चीज नथी, ए तो पर वस्तु छे। खेती नो मोल यानी जो कुछ तुझे पैसा मिले, कीमत मिले, ते संबंधी नो जे विकल्प आव्यो ते तीव्र राग दुख रूप छे। ते राग ना दुख ना परिणाम निश्चय थी जीव थी भिन्न छे अने तेनु ज्ञान थयु ते आत्मा थी अभिन्न छे। आ भेद ज्ञान नी वात छे अने तेज दुख दूर करवानो उपाय छे। शीत उष्णनी माफक पुण्य पापना भावने अहीं पुद्गलमां नाखी दीधा छे। शीत उष्ण ए तो परमाणुनी अवस्था छे अने आ राग द्वेष तो जीवनी पर्याय छे, तेने अहीं अचेतन कहीने पुद्गल प्रणाम कह्या छे। अचेतन छे पण तेमां ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि वहां शीत उष्ण को पुद्गल का कहा और यहां राग को भी पुद्गल का कहा, पण कहते हैं अचेतन छे पण तेमां स्पर्श रस गंध वर्ण नथी। जड़ कर्मनी अवस्था मां, जड़ कर्म यानी जो आठ कर्म है उनकी बात चल रही, द्रव्य कर्म स्पर्श रस गंध वर्ण छे अने आ रागादी अवस्था मां स्पर्श रस गंध वर्ण नथी, परंतु रागादीनी पर्याय मां ज्ञाननो अंश नथी, माटे तेने अचेतन कहीने पुद्गल परिणाम कह्यो छे। यहां पुद्गल परिणाम क्यों कहा है इसकी भी बात दोबारा यहां बताते कि इसमें ज्ञान नहीं है। अभी हमने देखा था ना, राग में ज्ञान नहीं है और ज्ञान में राग नहीं है, हमने देखा ना। अहो आ समय सार जगत नो अजोड़ अद्वितीय चक्षु छे, भरत क्षेत्र नो भगवान छे। शीत उष्ण नु पोतामा ज्ञान थाय छे तो ते शीत उष्ण अवस्था ने ज्ञान करावामा समर्थ कहेल छे। समर्थ नो अर्थ अहीं निमित्त थाय छे, तेम राग द्वेष नी अवस्था ज्ञान करावामा समर्थ छे एटले निमित्त छे। ज्ञान तो पोताथी थाय छे, निमित्त छे तो ज्ञान थाय छे एम नथी। मोटा मकान बंगला होय अने एमां मखमलना गालीचा अने लाखोनुं फर्निचर होय पण एमां तारे शुं भाई? ए तो बधी बहारनी धूल छे अने ते अनंतवार संयोगमां मळी छे। एनी ममता बुद्धि होय तो एमांथी निकळवू बहु भारे पड़शे भाई। तारे आत्मानी चैतन्य लक्ष्मी जोईती होय तो आई कहे छे के जे भावथी तीर्थंकर गोत्र बंधाय ते भाव अचेतन पुद्गल परिणाम छे एम नक्की कर। ज्ञान स्वभावनो अभाव छे माटे ते भाव पुद्गल परिणाम छे। यहां और एक कारण बताए, क्या कहा? आगे कहते हैं पर्याय में ज्ञान नो अंश नथी एटले ए पुद्गल परिणाम कहे छे। यहां कहते हैं ज्ञान स्वभाव नो जेमा अभाव छे माटे ते भाव पुद्गल परिणाम छे। अरे भाई जे भाव अचेतन छे ते निश्चय नु कारण केम थाय? चेतन नी निर्मल पर्याय थवामा अचेतन राग कारण थाय एम केम बने? ते भाव ज्ञान मां निमित्त हो पण एनाथी निश्चय मोक्ष मार्ग प्रगटे एम कदी बने नहीं। अचेतन राग कारण अने चैतन्य नी पर्याय कार्य एम कदी होय नहीं। ये कैसे एक एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स देते हैं। दृष्टि नी अपेक्षाएं तो स्वानुभव नी जे निर्विकल्प दशा ए पन जीव नथी। क्या कहा, ये समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? अभी यहाँ तो जो विकारी परिणाम है कौन से, ये राग द्वेष आदि जो सुख दुख आदि परिणाम है वो कहते हैं वो तो जीव के नहीं, वो तो पुद्गल के। अभी उसके भी आगे की बात जो नियमसार में हमने सीखी थी, यहाँ क्या कह रहे हैं? दृष्टि नहीं अपेक्षा है, यानी स्वभाव की अपेक्षा से जब हम द्रव्य की तरफ देखते हैं उस अपेक्षा से देखा जाए तो स्वानुभवनी जे निर्विकल्प दशा ए पण जीव नथी। वहां तो विकारी परिणामों को जीव का नहीं है ऐसा कहा, और यहां निर्विकारी जो परिणाम है, निर्विकल्प दशा का जो अविकारी परिणाम है उसको भी यहां से आत्मा नहीं है ऐसा कहा। क्या कहा, देखो देखो, दृष्टि नी अपेक्षा है तो स्वानुभवनी जे निर्विकल्प दशा, ये स्वानुभव हमेशा विकल्प रहित ही होता है, अभेद ऐसे स्वभाव का जो अनुभव है, भेद करके ये यहाँ ज्ञान है यहाँ दर्शन है ऐसा कोई भी भेद बिना अभेद, इसको निर्विकल्प कहा। निर्विकल्प यानी राग रहित ऐसा भी अर्थ होता है, उसको भी आप ले लो। तो स्वानुभवनी जे निर्विकल्प दशा ए पन जीव नथी, ए दशा तो जीवनो पर्याय भाव छे, पर्यायनो भाव छे, ते त्रिकाड़ी शुद्ध द्रव्यमान नथी। सम्यक दर्शन नो विषय तो त्रिकाड़ी शुद्ध द्रव्य छे। सम्यक दर्शन नी पर्याय के मोक्ष मार्ग नी पर्याय ते सम्यक दर्शन नो विषय नथी। मोक्ष मार्ग नी पर्याय ए मोक्ष मार्ग नो विषय नथी। क्या, क्योंकि पर्याय ना अनुभूति नी पर्याय त्रिकाड़ी ध्रुव सामान्य ने विषय करे छे, यानी जिस पर्याय में अपने आत्मा का अनुभव हो रहा है वह अनुभव रूपी जो पर्याय है वो त्रिकाड़ी ध्रुव सामान्य ऐसा जो अपना स्वभाव है उसको विषय करती है, यानी उसमें एकाकार हो जाती है, उसी में लीन हो जाती है। आवु वस्तु स्वरूप छे। देखो यहाँ क्या कहते हैं कि जो अनुभव रूपी जो पर्याय है जिसमें अनुभव हो रहा है उसकी उसका लक्ष्य कहाँ होगा, तो कहते त्रिकाली स्वभाव पर, और वह स्वभाव का जब लक्ष्य करके वह सामान्य को अनुभव में लेगा तो कह के सामान्य ने विषय करे छे, तो वह पर्याय भी उस त्रिकाली से भिन्न है। ख्याल में अभी ऊपर बताए ना पर्याय नो भाव छे ते त्रिकाड़ी शुद्ध द्रव्य मान थी। अभी यहाँ त्रिका यहाँ जो पर्याय है वो सम्यक दर्शन रूपी पर्याय ले लो, तो सम्यक दर्शन रूपी जो पर्याय जो अपने आत्मा की तरफ ही ढली हुई है उसी में एकाग्र हुई है ए पन त्रिकाड़ी शुद्ध स्वभाव मा नथी, ऐसी यहाँ पर बात बताई जा रही है। अभी ये जो प्रश्न है वो उसको हम कर लेंगे, इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। हो जावानी के ज्ञान तय तुझे लो कालो सोवाणी मस्तक